पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
वचन वार्ती का आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में थे इनकी मृत्यु होगी और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहां उत्तराधिकारी बना दिया था। पुण्यात्मा दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं, एक महापरोपकार कर रहा हूं। ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500-500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार, और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया, ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है, जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत, 17 वर्ष तक अठियोग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चे दार थे, हलवाते थे, खेती करते थे, भगवान का सेवन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चे दार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहेब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया, फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता ये तो नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे, और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुलुकदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया, और उसका उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो, और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी, यानी जयमल सिंह जी का शिष्य, और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है। और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए, सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम, यूं कहने के लिए जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम, ये नाम जप। उनसे क्या रिजल्ट हुआ इसका? बलोचिस्तानी सामस्ताना फाउंडर ऑफ द सच्चा सरदा सिरसा उसके प्रवर्तक का क्या बना, अब दिखाता हूं। देखो यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत पहला भाग, और इसके लिखने वाले कौन है, जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी निशीन है, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी उसके पीछे। काफी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान और तीन चार और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाह जी खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी 10 में इसकी, और वहां से इसको उठाकर फिर नौकानामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए, वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायियों से बर्बाद कर देंगे, उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे, उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज्यादा ना पढ़े, बाकी तुम पढ़ लियो, लेकर इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य है इनके। ये सारे ब्रह्मट्टी हो कमरे, बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दूं इनकी। लास्ट में इनके ऑपरेशन हुआ, पता नहीं वहां बंबई में ले गए, टांग में दर्द हो गया, उसके को 20 डॉक्टरों को दिखाया, फिर आर्ट में डिफेक्ट हो गया, वाल में डिफेक्ट हो गया, जयपुर ले गए, फिर बम्बे ले गए, फिर वापस लाए, और फिर काफी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़कर गए। अब कहने का भाव ये है कि अब आपको दिखाते हैं इनके परम धनी की दुर्गति, किसकी, शिवजाल जी की। अब पुण्यात्माओं कहते हैं मूल जो इनका है उसी के विषय में जानकारी होने से आराम से समझ में आ जाएगी आपके, कि बाकी जो दूसरे इसके अनुयायी हैं वो कहां जाएंगे। जैसे ये एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में, और वो भी आगरा से शिवदाल जी के ही शिष्य हैं, शिष्य के शिष्य, ऐसे परंपरा जैसे जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया, और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहां मथुरा में तुलसी साहेब बोल रहे उसको, उनका शुभ नाम तुलसी साहेब, वर्तमान में जो वहां बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है, तो उत्तर देते हैं तुलसी साहेब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे, बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं, और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में, और सतपुरुष जिन जानिया और सतगुरु जिसका नाम, तिनके संग शिष्य उभरे, नानक हर गुण गाओ। नानक साहब की वाणी बोली उस चेले ने उसके गुरु जी के आदेश से। वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो उसका सतगुरु नाम है, और उनसे उनके नाम लेने उनकी शरण में जाने से सबका उद्धार, शिष्यों का उद्धार हो जाता है। अब देखो इनकी अकल, इन सतनाम का तो बेरा भी कोनी, बात करें सतपुरुष की अब थोड़ी सी झलक और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए। देखिएगा सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहां से छपी है, कौन इसका प्रकाशक, जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है ये पढ़ने वाला है कि सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। किसका? शिवजाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। ये तो पहले हमने बता दिया। यहां देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं, इस ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का वचन। अब ये दफा एक, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहां सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, स्थान, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान सतनाम में, मुकाम को स्थान को। अब यहां सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं, मुकाम सतनाम यानी स्थान सतनाम, राधा स्वामी भी स्थान पहुंचावे। ये सार्वतन वार्तिक भाग पहला। अब 14 प्रश्न पढ़ दिया हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, यह मंजिल फिर सतनाम स्थान बता दिया इन्होंने, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान, और बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी स्थान बता दिया। ये मंजिल माने स्थान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहां देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को स्थान बताओ थे। ये अरिब कहते हैं सतनाम यानी स्थान का स्थान है कि जिसको संतों ने सतलोक सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी, या ये सतनाम मना समझ मारा इनके, इन्हों कहे सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय गुरुदेव वाला तुलसी साहेब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम, इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को क्या जान देंगे सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाने वो सतनाम को सतपुरुष कहे, और की तो सतनाम ने स्थान बतावे, सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा राधा स्वामी वालों से, कोई डिस्कस हो रही थी, उन्होंने कहा भी जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, ये आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? अक नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? अकिया बात तो भाई ठीक है, तो ये परम धनी की तो आयु, परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने, क्या उसके पास आम जीव बराग नहीं होते। अब दिखाता हूं शिवदयाल जी भूत बने फिर। श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ दारादा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बतेरा भाई, भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में दासनाब के समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दर दिए। इब आपकी मर्जी, जो ठीक लगे वो सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर, इनका कोई गुरु नहीं था पहले, तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद प्राण। ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र, अब 71 नंबर वचन है इनके, गीता कैसे वचन है, 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये, न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आई हो। अब बुक्की जी का कि जो शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुरख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था, ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं, और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या और कसर रहेगी परम धनी की हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की अभी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता, हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवावा था। और वह बयान किया करती थी मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी, बेहोश हो गया पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए तो सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी, कौन से देश में बताइए, सतनाम का न बेराना, ये नो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात भी उस पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा, और दो दो दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की मां के बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह ड्यूटी हो गुड़ तपस्या पर सारे घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और रुका भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा हो रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीते जी सेवा करा करती थी स्वामी जी की, रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। आए हाय नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से, नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसके माय प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट ने खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का फरियाद लगाते बुक्की में बैठा था भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। अब प्रताप सिंह जी राइटर ऑफ दिस जीवन चरित्र, अपने बड़े भाई शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाकर इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था और उसमें भूत बोल रहा शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब शालिग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी, ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का, यहां देखिएगा। यहां तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को भी जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी से अर्ज किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी से उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने युशालग्राम बोल रहे जिसने भी मौज की थी बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे, यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं एंडमेंट पहले की तरह बता देता। अपने आत्माओं एक भक्त बतावा था, मेरा चाचा था सगा काका और राधा स्वामी पंत से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था और सुबह शाम काफी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डालकर और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था, 2-2.5 घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता, उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। या तीन का दादा लाई है शिव जाला हुक्का पियो इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाखू छोतरा आप्फू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदी ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये उक्का पी हुए, अब क्या हुआ वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधु में आके बोलन लग गया, वो पड़ जा बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठ अन्यू के मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, अन्यू के बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने एक दो बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई, लेकिन वो रोजाना पूरा उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके मां पड़ा रहा, रुआ बेहोश पड़ी रहे, उठे दूर चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे, रुआ पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा कर उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी के पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहले बीड़ी नहीं पीवा थी, उका नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया चूरमा बना हुआ आप पर बुक्की के माध्यम से, और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तू आज भी संत है, और चूरमा खा और ऊपर धोखा पी हुआ गरुड़ गरुड़ बुक्की पी हुए, वो भीतर भूत बैठे उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहां देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को, उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छुटा भूत ते, अब पता नहीं कहां गया वो। तो पुणात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान पाया उनको उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए, और ये पांच नाम जाप करने वाले और तीन नाम वो जो सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा, दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साचीकरण की, और इसमें जब जरा भी झूठ हो तो आओ सामने कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गढ़ जोठे। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे, और ये मूल इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको दो गलजोट वो वहीं रह रहे, वो तो भूत बनने ही अक्रमतन उन ब्रह्म मट्टी होनी उनकी। फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं, राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कड़ी का कली का वो है शब्द, और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा, और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आदि माया की नीच चतुराई, जूठी बाजी पेंड दिखाई, और अवगत रचना रची पेंड माही, ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उसका उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सावन सिंह जी ने, और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा वहां ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं, परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं, अब सब वर्णन करके ये लंबा शब्द है, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं अपना उसे जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहां क्या होता है कि षोडश बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में तीन मंत्र का जाप करके दो अक्षर का वो सतनाम और एक अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहां पहुंच जाता सचखंड में, वहां इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। षोडश बानु हंस को रूपा, बिना सत बजे अनुपा, अंसा करत चौर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है, वहां जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है, 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है, और वहां भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चवर करता है वहां जाकर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता, तो चवर किस पर करते हुए परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानियों का समझ में बिना या वाणी बिना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने षोडश बानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि बानु उदय जो होई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हो, इतने ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं हुई इतनी उस करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया, इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहां इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहां नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखे है इसने। तो यहां प्रमाण देते हैं कि आदमाया की ने चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो इसको, किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है अंडे जैसा, और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए हमारे सारे कमल, उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सेंसरार कमल, और कहते हैं जैसे टेलीविजन में जहां भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहां का प्रोग्राम यहां टीवी में देख सकते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं इस पिंड में, शरीर में धुन सुनो, और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है, तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वो सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहां की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है, कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहां पर, उस परले पार कोई पहुंचा है। ये सतनाम मना समझ में रह इनके, सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष सतनाम भी सतनाम, और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम, तो ये सतगुरु भी कोई नहीं, सतपुरुष जाना ही नहीं, ये निराकार बतावे, और परमात्मा कहते वह साकार है। अब क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कभी सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जानकारी, पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है, इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड, और ये न्यूके है वहां परमात्मा है कोई नहीं, ये धुन सुनो इसमें, ये काल की धुन है सारी। अब गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे परले पार का जो भेद कह जनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कह जनकार का, वा रही गोरख वा रही दत्त वा रही दरु परलाद अर्थ, वार माने उरली साइड में, इधर ही रहेगी उरली साइड में वार, और पार परली साइड में। वा रही गोरख वा रही दत्त, गोरख तो आप जानते हैं दत्त दत्तात्रेय, और ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं ये इधर ही है इस काल के जाल में। वा रही गोरख वा रही दत्त वा रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वा रही सुखदेव वा रही व्यास वा रही पाराशर प्रकाश, वा रही दुर्वा सादर वेश वा रही नारद सारद शेष, वा रही भरतरी गोपी चंद वा रही सनक सनंदन बंद, वार माने उरले ही साइड में, वार ही इधर ही। वा रही ब्रह्मा वा रही इंद्र वा रही सेंस कला गोविंद, एक हजार कला का भगवान यु काल भी इधर ही है। वा रही शिव शंकर दो संभ वा रही धर्म राय आरंभ, ये तुम्हारा शिव शंकर भी वार ही है तुम्हारा शंभु, और धर्मराय भी वार ही है। वार ही धर्मराय धरधीर परम धाम पहुंचे कबीर, रग यदुसाम अथर वेद परम धाम नहीं लहा वेद। अब चारों वेदों में परम धाम सत धाम सतलोक धूलोक इन सब का वर्णन है, लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं, ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दिलवा रखा दे रखा है। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार्थे हाने था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए फिर वापस छोड़ा, आंखों देखा हाल लिखा भगवान का, और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा ता जुलाए न पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आसी, पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा, अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, त्रज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब के बताया भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो कहां से आए हो, तो स्वयं बताया कि अब धू अवगत से चल आए, अभिगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से, और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया, और काशी नगर जल कमल पडेरा ता जुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी, मात पिता मेरे कुछ नहीं मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया जगत करे मेरी हंसी, मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के, कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से स शरीर यानी समृत स शरीर परमात्मा है सबसे पहले, और सुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्धम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए अब यहां इन अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये सुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे और फिर स्वयंभू कहा? निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की, और अकायम था अकायम शब्द लिख देते, सुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए, सुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना नूर से, और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, तो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष, वो परमात्मा है और अपनी ज्ञान अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहां प्रकट होते हैं। तो यहां क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आरालोक निरंजन, हमारे गांव में था नाथों का डेरा है अभी भी, वो बाबा आया करता है का अर्दालोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है ये पता चलिया, आंधे काल का नाम ले अलोक निरंजन अट्टा गा लियो माई। तो ये इस अलख निरंजन सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अपनात्मा हम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंस गए और अपने का दुख अपनों को ही होता है। वो परमात्मा यहां ऐसे सुंदर लोक न छोड़कर जिसमें दुख नाम की चीज नहीं, और यहां परमात्मा का एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया, उनके साथ मार मार रखी, घर घर में गए, गांव गांव में गए, नगर नगर में डंडोरा पीटा, कहीं जाकर खड़े होके अपने आप आवाज लगाने लग जाते, कथा सुनाने लग जाते, अपनी अमृतवाणी सुनाने लग जाते, बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, परमात्मा के फिर शिष्य बन जाते, इस ज्ञान को समझाया, उनके दुख दूर किए। और हम इतने इतना जो है हमें हम इस अज्ञान से भर दिए काल के दूतों ने, हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे। कहा है परमेश्वर ने चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आए, संतों को समझाया, अच्छी आत्माओं को, उन्होंने फिर मेरे से परिचित होकर के इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये हीरे माणिक मोती बुरस ये जग सुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी अमृत और मोती बरसा रहे हैं, हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं सत्साधना रूपी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण करके डले ढो रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सृजनहार, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। अब आपने शिवदयाल जी की दशा देख ली, भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में प्रवेश, तो परमात्मा गरीबदास साहिब ने जो कहा कि झूठे गुरु मर के भूत बने फिरे हैं और उनके अनुयायी कहां जाएंगे सोच लो भक्तों। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये परम धनी को हम आंख बीच में बैठे संता भक्ता ने सोचे भी तो भगवान से मिल गए, और कहते हैं ऐसी आंखें बदल कर नू रूप देखो बोला इसमें किम में आंख बदल के देख लो बिना बदले देख लो। ऋषि महर्षियों ने इसको खूब छान रखा, सारे कमल नारी नारी बता रखे, फिर भी ना पाया भगवान के निराकार। और वह छुरी दादा स्वामी और धन सतगुरु जय गुरुदेव वालों की भगवान निराकार बतावे, और परमात्मा सह शरीर मनुष्य दृश्य और उसके एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसी शोभा है तो निराकार कैसे हुआ। तो यहां भगवान बताते हैं समझा है तो सिर धर पाओ बोर नहीं रे ऐसा दाव, समझा है तो सिर पर पांव धर लो और आ जाओ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में छुटवा लो पीछा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे पिता हैं, इन्होंने आकर हमें ज्ञान कराया कि आप यहां के रहने वाले नहीं हो, जिस स्थान को जिस लोक को तुम अपना मानते हो ये आपका नहीं है, आपको यहां विवश करके रोका हुआ है। यहां 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है प्रभु है जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ये ज्योत निरंजन काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उसी उद्देश्य से इसने आप जी को यहां विवश करके रोका हुआ है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आप जी को यहां झूठे लालच में यहां बांध रखा है, और जन्म और मृत्यु का यहां का विधान बनाकर आप जी को उसी कोल्हू में पीट रहा है। पुण्यात्माओं अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं, यहां आप देख रहे हो क्या दुर्दशा है प्रत्येक प्राणी की, किसी को कोई कष्ट है किसी को कोई कष्ट है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों का ये हाल है, अन्य योनियों का क्या हाल होगा, जैसे कुत्ते के शरीर में गधे के शरीर में पशु पक्षियों के शरीर में कितना दुखी है ये प्राणी, और मनुष्य जीवन में भी क्या हाल है प्रत्येक प्राणी का। कोई प्राणी सुखी नहीं, इस दुख को हमने सुख मान लिया, इस दुख के अंदर थोड़ी सी राहत किसी को है उसी को हम सुख मान बैठे। इसके लिए परमात्मा कबीर देव जी कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि सभी काल आहार है ये जो इसने 21 ब्रह्मांड में आपको उत्पन्न किया हुआ है, अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब कुछ किए हुए हैं, आप जी इसके आहार हो, जैसे कसाई बकरे पालता है उसका उद्देश्य क्या होता है उन बकरों को सुविधा देने का, अपनी रोजी रोटी और स्वयं आहार करना। उन बकरों के लिए, बकरियों के लिए वो कितनी सुविधाएं करता है, उनके लिए चरागाह बनाता है, जल की व्यवस्था करता है, तालाब और ऊपर शेड डाल देता है, झोपड़ी बनाता है गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। उन सुविधाओं को देखकर वो बकरे वो समझते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है, इसने हमें बहुत सुविधा दे रखी है। और जिसमें वो कसाई उनका मालिक उन बकरों के उस स्थान पर आता है तो बकरे उसको अपना एक भद्र पुरुष मानकर, अपना नेक मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसके पास आते हैं। कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर उसको प्यार देना चाहता है, सीने से लगाना चाहता है बकरा, और कोई उसको चाटता है मुंह जिह्वा से एक प्यार जताने के लिए, और वो देखता है ऐसे हाथ लगाता है, वो उसको चाटते हैं प्यार करते हैं, वो देख रहा है कि कितना मांस इसमें बन गया, कितने किलो का हो गया यो, कितने का बिकेगा। और वो बकरे सोचते हैं ये हमें लाड कर रहा है, वो उससे प्यार करते हैं। अब उन सुविधाओं को देखें तो बकरों को ये ऐसा लगता है कि बहुत नेक आदमी हो। और फिर जब कहीं से ऑर्डर आ जाता है 10-20 बकरों का, उसमें ये नहीं देखता कि इसका बेटा मरेगा, बेटी मरेगी, मां मरेगी या भाई मरेगा, वो तो लेकर लाठी और हांक लेता है उसको, किसी का बेटा मरो आओ, चाहे किसी की बेटी थे मां या भाई या बहन, और वो जाकर के उनको काट देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने बताया कि धर्मदास उनकी एक परमात्मा, एक श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा उनका भक्त हुआ, जिसको परमात्मा आकर मिले थे। एक विधान है परमात्मा का, परमेश्वर का, जो वेदों में भी वर्णित है, और वो लीला ऐसी करते ही हैं, और वेद भगवान की ही गुणगान करते हैं। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे। एक बहुत ही अच्छी आत्मा परमात्मा की खोज में भटक रही थी, परमात्मा आकर उनको मिले, तब उनसे कहा था कि धर्मदास जिसको तुम पूज रहे हो ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और तुम फिर भी इसी की पूजा कर रहे हो, सर्प को दूध पिला रहे हो। फिर परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जैसे आप जी देखते हो कि यहां कितनी सुविधाएं दे रखी है काल भगवान ने, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इस पर कितने अच्छे मेवे लगे हैं, मेवा काजू किशमिश फल लगे हैं, सेब संतरे और कनक गेहूं चना बाजरा ज्वार मकई, और फिर कभी वर्षा हो जाती है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, नीचे जमीन में शीतल जल मीठा जल भर रखा है। इन सुविधाओं को देखते हैं, शीतल हवा चल रही है, सूर्य उदय हो रहा, अस्त हो रहा है, इन सुविधाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी सुविधा हमें भगवान ने दे रखी है। तो इस दृष्टिकोण से तो हम सोचते हैं बड़ा दयालु है ये भगवान, जिसने हमारे को इतनी सुविधा हमें दे रखी है, कितना ध्यान रखा हुआ हमारे प्रत्येक व्यवस्था का, प्रत्येक व्यवस्था को कितना अच्छी तरह हमें दिया हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब सुविधाएं प्रदान कर रखी है। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार दुर्घटनाग्रस्त होकर के समाप्त हो जाता है, तो कहां गई फिर इसकी दयालुता? उसमें हम याद भी नहीं करते कि भगवान हो तो ऐसे जुल्म किया करता है, क्योंकि हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, इस गंदे लोक में रह रहे, यहां पर ये सदा बना रहेगा, जन्म और मृत्यु इस तरह की घटनाएं सदा बनी रहेंगी। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि एक और स्थान है सतलोक, सचखंड, उस सतलोक में जाने से तुम्हारी ये सब समस्याएं हल होंगी, सब समस्याओं का समाधान होगा। यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं रो तू सृष्टि को, और सृष्टि रो है मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उन अच्छी आत्माओं में से आदरणीय गरीबदास साहेब गांव छुड़ाने जिला दद्दर हरियाणा वाले हैं, और उनको भगवान मिले, सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया, सब व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का स्थान दिखाया, और जहां प्राणी नरक में दुख पा रहे थे वो स्थान दिखाया, यहां का नकली स्वर्ग महास्वर्ग दिखाया, यहां के नकली कंस्ट्रक्शन कर रखी है, इस काल ने अपनी शक्ति से करवा रखी है, नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक, नकली ब्रह्मलोक में बना रखे हैं, वो भी दिखाए, और जहां बैठकर 100,000 मानव शरीर धारी प्राणियों को ये आहार करता है वो भी दिखाया, फिर अपना सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, और वहां परमात्मा को देखकर, सारी व्यवस्था को समझकर संत गरीबदास साहेब जी बड़े खुश हुए। फिर परमेश्वर ने उनको वापस भेज दिया शरीर में, उसमें गरीबदास जी के शरीर की अंतोष्टि करने की तैयारी थी, मृत जान लिया था, क्योंकि आत्मा को परमात्मा निकाल ले गए थे, चिता के ऊपर रख दिया था, तो परमेश्वर ने वापस भेज दिया, तभी वो चिता पर ही हलचल हो गई, नीचे उतर आए, उठकर चल पड़े, परमात्मा की आंखों देखे उस व्यवस्था का, गुणगान करने लगे अपनी अमृतवाणी में। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहेब जी के आत्मा में, अंतःकरण में ये ज्ञान भर दिया था, जो उन्होंने बाद में बोला। तो यहां बताया है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला, और तुम रोवत हो मोहे, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के दूतों से चिपके हुए हो, इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो, और मुझे नहीं पहचान रहे, और तुम मुझे खोज रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझ तक ना पहुंचकर इन काल के ही इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं। अब मैं ज्ञान बताने आया हूं, अब तुम सुनते नहीं, तो परमात्मा ने क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार, राम रटत कन्या भली साकट बलो न पूते, छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूते, राम रटत दारी दर भलो टूटी घर की छाने, वो कंचन मैल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान, राम रटत कोड़ी भलो चूचू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम।